बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। इकबाल पार्क में जो हुआ, यानी जहां मीनार पाकिस्तान वाक़ है, उसने तमाम सवालात को एक दफ़ा फिर जन्म दे दिया। ये वो सवालात हैं जो कि जब भी ऐसा कोई वाक़ा होता है उस वक्त उठते हैं, उनके जवाब तलाश किए जाते हैं। फिर जब वो वाक़ा पुराना हो जाता है या जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये सवालात और इनकी नौइयत जो है वो कम होती जाती है या ये फेड आउट हो जाते हैं। ऑल्दो ये डिबेट हमारे मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर मौजूद है, और जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो ये डिबेट दोबारा अलाइव हो जाती है। सानेहा मोटरवे जो हुआ, उसके बाद आपने देखा बेशक जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया गया, ट्रायल हुआ, प्रोसिक्यूशन हुई, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ऐसे वाकयात ख़त्म नहीं होते। अब जो ग्रेटर इकबाल पार्क में हुआ, जहां मीनार पाकिस्तान वाक़ है, वो शॉकिंग है, इसलिए कि वहां एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, बल्कि तकरीबन 300-400 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक खातून के साथ दस्तराजी की, उसके कपड़े फाड़े, उसे हवा में उछालते रहे, और ये तकरीबन 2 घंटे तक ये तमाम सिलसिला जारी रहा। जियो न्यूज़ ने इस हवाले से जो खातून है विक्टिम आयशा बेग, उनका भी वर्जन आपके सामने रखा है और बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज भी हमने की है। लेकिन ये डिबेट अब जोर पकड़ रही है कि क्या सजा का यकीनी बनाना जरूरी है या सजा की नौइयत ऐसी हो कि उससे कोई भी शख्स जो कि जिम्मेदार है वो इबरत का निशान बन जाए, या सजा इस तरीके से दी जाए कि जिस शख्स ने भी ये अमल किया हो और ऐसा घिनौना जुर्म किया हो वो सब के लिए एक इबरत का निशान बने और हर एक के जहन में डर बैठ जाए कि अगर ऐसी कोई घटिया या गलीज हरकत की जाएगी तो फिर अंजाम ऐसा होगा। जो कानून हमारे मुल्क में राइज है वो इस हवाले से कितना कवर करते हैं, मज़हब हमें इस हवाले से क्या बताता है, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी, मजहबी स्कॉलर हैं, हम उनसे अक्सर रहनुमाई हासिल करते हैं। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो सर, अगर मुआशरे के हवाले से बात की जाए, अब ये ठीक है, जो आपको मालूम होगा जो मोटरवे पर एक, जिसे मोटरवे रेप के केस कहते हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे ही मुल्क में हुआ, ठीक है, सजा हो गई जो इसके अंदर शामिल लोग थे उनको। अब ये वाकया हुआ है जो कि मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल, जहां मीनार पाकिस्तान वाकया है वहां पर यौम आज़ादी के पे हुआ, और वहां पर सबको पता है कि लोग जाते हैं वहां पर एक उसकी सेलिब्रेशन के लिए। क्या इस वाक़े का हो जाना वजह ये है कि तरबियत हम अपने माशरे की, अपनी कौम की नहीं ठीक कर पा रहे, या कानून की अमलदारी नहीं है इसलिए ऐसे वाक़यात होते रहते हैं?
सबसे बड़ी चीज वही है जिसका आपने आखिर में जिक्र किया, हम कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सके। हमारे यहाँ कानून शिकनी को काबिले फख्र समझा जाता है। हमारे मुल्क की पिछली पूरी तारीख ये बताती है कि यहाँ कभी आईन, कानून और दस्तूर को वो तकद्दस नहीं मिल सका जो महज़ब कौमों में उसको मिलना चाहिए। जहाँ इस तरह के जुमले सुनने को मिले हों कि आईन क्या है, ये तो चंद कागजात हैं, जब चाहे फाड़ कर फेंके जा सकते हैं, जहाँ 3 मरतबा बंदूक ने आगे बढ़कर खुद अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी भी की हो, कानून भी तोड़ा हो और आईन को भी मुअत्तल किया हो, और जहाँ हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा अपने मकासद के लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, उसमें कभी लोगों को ये ना बताएं कि कानून का एहतराम कैसे करना है। आपने मजहबी रहनुमाओं के हुजूम देखे हैं, इन्हीं सड़कों पर देखे हैं जी। आपने सियासी रहनुमाओं के हुजूम देखे हैं, आपने पार्लियामेंट के सामने लोगों को जो कुछ वो कर रहे थे करते देखा है, आपने वजीर आजम हाउस पर और टीवी पर लोगों को हमला करते देखा है, तो ये जहां हो रहा हो वहां आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, वो सब कानून का आखिरी दर्जे में एहतराम करना सीखें, एहतराम की तरबियत दें। वो खुद हुजूम को इसी तरह इश्तियाल दिलाकर जब अपने मकासद हासिल करते हैं तो फिर हुजूम अपने मकासद के लिए वही तरीके इख्तियार कर लेता।
गामदी साहब, यहाँ बदकिस्मत बात यह है कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो विक्टिम होता है, जो मजलूम होता है उसको ब्लेम किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। यहाँ एक डिबेट ये भी शुरू हो गई है अब उस खातून के साथ जो हुआ कि जी वो देखिए वो ऐसे कपड़े पहन कर आई, हालांकि वो एक नॉर्मल लिबास में थी, ठीक है जिस भी लिबास में हो ये भी खैर दलील में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कि जी वो ऐसे कोई कपड़े पहन के आ गया, कोई फैशन करके आ गया जी, और अगर ऐसे होगा तो फिर आप लोगों के जज्बात को उभारेंगे और फिर वो इस तरह की हरकत करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वो डिबेट है बदकिस्मती से सर जो कि ऑलरेडी शुरू हो गई है, यानी एक आप सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ट्वीट कर दीजिए उस खातून के हक में कि बहुत ज्यादती हुई है, तो एक लाइन होगी नीचे उन लोगों की जिन्हें आप अपोलोजिस्ट कह सकते हैं, जिन्हें मैं ये कह सकता हूं कि वो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इसका तो शायद इलाज ही यही था, इसके साथ जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, इस्लाम तो पर्दे की बात करता है, इस्लाम हया की बात करता है और इस खातून को बाहर आना ही नहीं चाहिए था। इसकी वजह क्या है सर, ये जो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है हमारे मुल्क में?
ये भी मरीजाना जहनीत है। हमारे यहां आमतौर पर रहनुमाओं ने लोगों को ये सबक दिया है कि असल मुजरिम हमेशा खातून होती है। आपने देखा नहीं है कि कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, वो दीन शरीयत हर चीज को पामाल करता है, रिश्वत लेता है, वो लोगों के सामने मिलावट करने का इतराफ़ करता है और इस तरह के जरायम करता है, किसी के माथे पर शिकन नहीं आती, लेकिन एक खातून के सर पर दुपट्टा है या नहीं, चादर है या नहीं, ये हमारे यहाँ मालूम होता है कि आसमान और ज़मीन में जलजला बर्पा हो गया है। तो ये जहनीयत भी हमने पैदा की है, इसी को हम असल इस्लाम कहने लग गए हैं, उसके नतीजे में लोग ये मुजाहरा करते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फजर की नमाज के लिए एक खातून आई, उन्होंने तो कोई बुरा लिबास नहीं पहना हुआ था, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही थी, एक औबाश ने उन पर हमला कर दिया और उनको रेप किया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुजरिम को सजा दी है और बदतरीन सजा दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि कल से ख्वातीन मस्जिद में नहीं आएंगी या वो सुबह नहीं निकलेंगी या वो मुंह धेरे नहीं निकलेंगी। तो हमारे पैगंबर की तालीम तो ये थी कि रियासत को, सोसाइटी को, मुआशरे को अपना रुख मुजरिम की तरफ से करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक खातून या एक मर्द बराहना बाहर निकल आया है तो इससे आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि आप इस तरह की बदतमीजी और नाशाइस्तगी उसके साथ करें, उसको भी मोहब्बत से और महज़ब तरीके से समझाकर ही अंदर भेजना चाहिए। ये तो जानवरों का मुआशरा बनता जा रहा है और अफसोस है कि हम इस तरह की चीज़ों को जब देखते हैं तो फौरन उसके लिए माजरत पेश करना शुरू कर देते हैं और जिसके खिलाफ इकदाम होता है फौरी तौर पर उसी को सब नसीहतों का हदफ बना लेते हैं।
गम साहब ये इसका ये चले हम अगर इस ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है सर, और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इंग्रेस बहुत ज्यादा है, हर एक के पास मोबाइल है और उसमें फिर एक कैमरा है, वीडियोस फौरन बन जाती हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ क्या है सर, ये क्या इखलाकी तरबियत है कहने को हम, और बिल्कुल सबको पता है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम फौरी तौर पर बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं और हमारे सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं हमारे मजहब के साथ, लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये 400 लोग थे, शायद इनमें से कोई इंसान एक भी नहीं था या कर को होगा, ये अखलाकी गिरावट जो है या अखलाकी इसका सदेबाप कैसे मुमकिन है, इसकी तरबियत की जाए, को नेशन की दोबारा स्कूलिंग होने की जरूरत है, क्या वालदैन को अपने बेटों को खास तौर पर उनकी तरबियत अच्छे करने की जरूरत है, या फिर हम वही उसी डिबेट पर आ जाएंगे कि भाई डंडा हो रियासत का जिसकी वजह से सब सुधर जाए?
नहीं, तीनों चीजें हमारी तवज्जो का मरकज बननी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आखिर ये क्या वजह है कि वो घर जिनमें ये तरबियत होती थी, जिनमें लोगों को शाइस्तगी सिखाई जाती थी, तहजीब सिखाई जाती थी, उस तहजीब के नतीजे में आंखें किसी खातून को देख के झुक जाती थी, जिसमें लोग गलियों महल्लों में कभी इस तरह की कोई मामूली सी हरकत भी बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि 40 साल मैंने लाहौर में गुजारे हैं, मेरे लिए बायस ताज्जुब था कि क्या ये हो सकता है कि 400 लोग हों और वो सब के सब इस वहशत पर उतर आए। तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा हादसा हमारे घरों में भी हो रहा है, हमारे खानदानों में भी हो रहा है। इसी तरह से हमारी तालीम का क्या हाल है, क्या फिलवाके हमने अपनी तालीम को किरदार साजी का कोई मिशन दिया है, यानी सिर्फ निसाबात ही तब्दील करते रहते हैं زبانوں ہی پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، یا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ نئی نسلیں جو ہمارے پاس تعلیم پانے کے لیے آتی ہیں، سب سے پہلے ان کو انسان بنانا ہے، ان کے اندر شرافت پیدا کرنی ہے، ان کو تہذیب کا سبق دینا ہے، انہیں اچھا شہری بنانا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ وہ انسانیت کا شرف بنے؟ تو کیا فی الواقع ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے؟ ذرا ایک نظر ڈالیے، آپ تو صحافت سے متعلق ہیں، اور جا کر جمعے کے خطبے سن لیجئے، کیا فی الواقع ان کا موضوع یہی چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی ہم بتاتے ہیں اپنے سامعین کو کہ تمہارے اندر تہذیب، شرافت، کیا چیزیں ہیں جن کا فقدان ہوتا جا رہا ہے؟ تو یہ ہماری ہر سطح کے اوپر کمزوریاں ہیں، یعنی خاندان کی سطح پر بھی، تعلیم کی سطح پر بھی، مذہب کی سطح پر بھی، سب کو مل کے انہیں دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر لباس کے بارے میں یا باہر نکلنے کے آداب کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کا یہ موقع نہیں ہوتا۔ عام حالات میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ تہذیب اور شائستگی کے طریقے اختیار کریں، ہمیشہ ڈیسنسی کو پیش نظر رکھیں۔ یہ عام حالات میں تعلیم اگر نہ دی جائے تو اس طرح کے موقعوں پر جزا فضا اور ماتم کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کے ساتھ البتہ ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، قانون شکنی کو عیب قرار دیا جائے، لوگ، ہمارے رہنما، ہمارے سیاستدان سب اپنے لوگوں کو تلقین کریں، وہ مظاہرے کریں تو تلقین کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیں تو تلقین کریں کہ تم سڑکیں بند نہیں کرو گے، تم گاڑیوں پر نہیں پل پڑو گے، تم کسی شخص کے املاک کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر یہ تعلیم ہم عام حالات میں دیں گے تو اس کا ظہور اس طرح کے موقعوں پر بھی ہوگا۔
غن سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہری بات ہے زور پکڑتا ہے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جی سر عام سزائیں دی جائیں تبھی کوئی عبرت کا نشان بنے گا اور وہ باز آئے گا، کیا؟ اور پھر مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیے جی سعودی عرب کے اندر کیا نظام ہے، وہاں دیکھیے ایسا کچھ ہوتا ہے تو سر عام سزا دی جاتی ہے اور پھر کوئی جرت نہیں کرتا، اسی لیے قانون کا خوف ہے اور ریاست کی عملداری ہے، ریاست کی ایک رٹ ہے۔ کیا آپ کے نزدیک سر عام سزائے دینے سے ان لوگوں کو جو کہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ ہیں، کیا ایسے واقعات کا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ سر،
میرا خیال ہے کہ یہ محض ایک جزوی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ تینوں چیزوں کو موضوع بننا چاہیے، یعنی کیا ہماری پولیس پھر واقع وہ کردار ادا کرتی ہے جو پولیس کا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں معاشرے کی بحثیت مجموعی تعلیم تربیت تو جیسی کچھ بھی ہے، کیا یہ محکمہ جس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ شہریوں کو حفاظت فراہم کرے، وہ حفاظت فراہم کرنے میں کامیاب ہے؟ کیا کوئی خاتون بھاگ کر، کوئی مرد بھاگ کر کسی تھانے میں چلا جائے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہے؟ اگر قریب میں کوئی یہاں یہ واقعہ ہوا ہے، پولیس کا سپاہی ہوتا تو ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرتا؟ تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارا عدالتی نظام اس وقت بالکل تفن زدہ ہو چکا ہے۔ عالمی سطح پر ہماری عدالتوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ باعث شرم ہے۔ تو توجہ دینی چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہمارے عدالتی نظام کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے۔ بہت کچھ جو آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں مجرم کا تعاقب کرنے کا، مجرم کے خلاف پروسیکیوشن کا، اس کے لیے مقدمہ بنانے کا، وہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ سزا تو آخری چیز ہوتی ہے، اور وہ عبرتناک سزا بھی دینی چاہیے اس طرح کے مجرموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رہنمائی کی ہے قرآن مجید میں کہ اس طرح کے مجرموں کو بہت ہی غیر معمولی سزائیں دی جا سکتی ہیں، دینی چاہیے۔ اس میں اگر آپ محسوس کریں کسی وقت کے لوگوں کی عبرت کے لیے سر عام سزا دی جائے، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن یہ آخری چیز ہے۔ محض سر عام سزائیں دے دینے سے جرم نہیں رکا کرتا۔
اس حوالے سے غابدی صاحب، کی ایک آخری سوال میرے ذہن میں کہ پھر اگر میں، آپ نے جو فرمایا ہے اس سے یہ سمجھا جائے کہ سزا یقینی ہے، یقینی ہونی چاہیے، سزا کے اوپر عملداری ہونی چاہیے قانون کے مطابق، سزا کا سخت ہونا یا عبرتناک ہونا وہ شاید جزوی چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں۔
یہ میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ جب تک آپ یہ باقی چیزیں نہیں پیدا کرتے، اور دوسرے یہ کہ سزا فوراً ہو، عدالتی نظام لوگوں میں انصاف پیدا کرنے کے لیے اس کو مؤخر نہ کرتا رہے۔ آپ جانتے ہیں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر اصل میں انصاف کے تاثری کو ختم کر دیتی ہے۔ दूसरे ये है कि हमारे यहाँ जो सजाएं आमतौर पर इख्तियार की गई हैं, जेल में डाल देना या इस तरह की बात सजाएं, उससे माशरे की निगाह से मुजरिम गायब हो जाता है, तो माशरा भी कुछ दिनों के बाद गैर मुतल्लक हो जाता है। इसमें अल्लाह ताला की जो मुकर्रर करदा सजाएं हैं उनको लाजमन सामने रखना चाहिए, लेकिन वो सजाएं भी उस वक्त मौसर होंगी जब आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन ठीक होगी, पुलिस का रवैया ठीक होगा, आपके प्रोसीजर के कवानीन बेहतर होंगे।
अमीर साहब, आप जरा थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, गैर मामूली सी सूरत हाल है। अब लफ्ज़ अगर कब्जे का इस्तेमाल किया जाए तो वो कुछ लोग उस पर मोतरज होते हैं कि नहीं, कब्जा नहीं कहना चाहिए कि अफगान तालिबान का कब्जा है, वो तो वहां पर ट्रू रिप्रेजेंटेशन है और उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और अब वो वहां पर इक्तदार में है या इक्तदार बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आपके नुक्ता नजर के मुताबिक शरई एतबार से क्या अफगान तालिबान की जो इस वक्त वहां पर उसे वो मुसल्लत है या कब्जा है या उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, क्या वो शरई एतबार से आपके नुक्ते नजर के मुताबिक वो जायज है?
इस्लाम के नुक्ते नजर से हकूमत कायम करने का एक ही तरीका जायज है और वो ये कि वो लोगों की राय से कायम की। ये अफगान अवाम का हक है कि वो ये फैसला करे कि उन पर किसको हुकूमत करनी है। लोग इन दिनों ये कहते हैं कि फला और फलां को शिकस्त हो गई, खास तौर पर हमारा कौमी मिजाज ये है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई ये हमें बहुत तस्कीन देता है। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, आलमी ताकतें इस तरह के एडवेंचर करती रहती हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में शिकस्त अफगान अवाम को हुई है जो इस 21वीं सदी में भी इससे महरूम है कि वो अपने हुक्मरानों का इंतखाब अपनी रजामंदी से, अपनी आजादाना मर्जी से कर सके। तो जायज़ हुकूमत तो सिर्फ वही होती है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के हाँ जो भी निज़ाम बनेगा वो लोगों की राय और मशवरे से बनेगा। मुसलमानों के जलीलुल कदर हुक्मरान सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब ने अपने खुतबे में फरमाया और ये खुतबा बुखारी में नकल हुआ है कि ला खिलाफत अन मशवरत मिनल मुस्लिमीन, वो हुकूमत जो लोगों की राय से नहीं बनी वो हुकूमत सिरे से हुकूमत ही नहीं है। तो इस वजह से तालिबान हो या कोई और, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की राय हासिल करे, लोगों का एतमाद हासिल करे। अफगानिस्तान में इस वक्त एक दस्तूर मौजूद है और मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है वो आपकी नज़र से ना गुजरा हो, वो दस्तूर तालिबान के अपने फिक्र के लिहाज से आखिरी दर्जे का इस्लामी और मजहबी दस्तूर है। तो उस दस्तूर के मुताबिक हुकूमत उनको संभालनी चाहिए, सब लोगों को शामिल करना चाहिए और वक्त पर इंतखाबात करा के लोगों का एतमाद हासिल करना चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया है उसका इजाला सिर्फ इसी सूरत में होगा, जायज़ हुकूमत लोगों की राय से कायम होती है, वो बंदूक के जोर पर कायम नहीं होती।
अफगान साहब, अफगानिस्तान में अब चलें तालिबान अब वहाँ पर हैं, अगर वो लोगों की राय इस हुकूमत के अंदर और उसकी राय उनकी उसकी राय के बेसिस के ऊपर अगर वो हुकूमत बनती है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहाँ डिबेट ये है या कहा जा रहा है कि वहाँ शरीयत का नफाज होगा, तो फौरी तौर पर सवाल यहाँ पर पाकिस्तान में उठाया जाता है कि भाई हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई कानून साजी ऐसी नहीं होगी जो कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम हो, लेकिन फिर साथ ही ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत का नफाज नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या यहाँ पर रायज जो निज़ाम है ये हम और जिस निज़ाम के तहत हम जिंदगी चला रहे हैं, हुकूमतें चल रही हैं, क्या ये हम खुदा ना खास्ता को नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, या ये दुरुस्त निज़ाम हुकूमत है या निज़ाम है जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं?
हमारे आइन में भी ये सब बातें लिखी हुई हैं और हमारे आइन से कहीं बढ़कर ये अफगानिस्तान के दस्तूर और आइन में लिखी हुई हैं। ये जो नफाज शरीयत की ताबीर है ये ताबीर ही बिल्कुल गलत है, शरीयत पर अमल करना चाहिए। इसमें ये जहनीयत कार फरमा है कि हकूमतों को ये हक है कि वो जो कुछ भी इस्लाम समझती हैं वो लोगों पर बंदूक के जोर से नाफिज कर दें, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी के शख्सी मामलात में किसी हकूमत को मुदाखलत का हक नहीं है। मैं लिबास कैसा पहनूंगा, मैं लिबास के बारे में दीन के अहकाम को किस तरह समझूंगा, मैं तालीम क्या पाऊंगा मर्द हो या औरत, मेरा कैरियर क्या होगा, मुझे अपने लिए क्या शोभा इख्तियार करना है, फनून लतीफा के बारे में मेरी क्या राय है, इनमें किसी हुकूमत को मुदाखलत का हक नहीं है, न पाकिस्तान की हुकूमत को, न तालिबान की हुकूमत को, न सऊदी अरब की हुकूमत को, न ईरान की हुकूमत। ये सब शख्सी मामलात है। हुकूमतों का काम यह है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्मरानों को अहकाम दिए हैं उन पर अमल करें, और उनमें सबसे पहला हुक्म यह है कि अमरोहुम शूरा बैनहुम, लोगों की राय के एतमाद पर हुकूमत करो। दूसरा हुक्म यह है कि इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल, जब तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो आखिरी दर्जे में इंसाफ कायम करो। तीसरा हुक्म यह है कि वान तवद्दुल अमानात इला अहलिहा, जब तुम लोगों को ओहदे और जिम्मेदारियां दो तो मेरिट की बुनियाद के ऊपर दो। और इसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया है कि जुमे का एहतमाम करो, हुक्मरान मेंबर पर आए, अपने आप को जवाबदेही के लिए पेश करें। यह बताया है कि टैक्स की बजाय जकात की बुनियाद पर नज़्म चलाया जाए। यह बताया है कि पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह से अपने सामने रखो कि वो तुम्हारी रियाया नहीं है बल्कि बराबर के शहरी हैं, और फ़ैख़वानुकुम फ़िद्दीन, वो सब दीन में तुम्हारे भाई हैं, उनके माबैन कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये दीन के अहकाम हैं, इन पर अमल करने का नाम है शरीयत की पाबंदी। लोगों के शख्सी मामलात में और घरों में दाखिल होके उनका लिबास दुरुस्त करना और उनको मौसीकी सुननी है या नहीं सुननी, इसमें किसी हुकूमत को कुछ करने का हक नहीं है और इस्लाम की रूह से हक नहीं है। हुकूमत का दायरा सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक हक तलफी को रोकना और एक जान माल और आबरू के खिलाफ ज्यादती को रोकना।
अब यहाँ एक तासुर है गामजी साहब कि जो यहाँ मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी जा रही है अफगान तालिबान को कि बहुत बड़ा काम हो गया और बड़ी जिद्दोजहद के बाद अफगान तालिबान ने दोबारा, अगर मैं ये कहूँ, अब अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और इसे मुख्तलिफ हवाले से, कई तो ये भी कह रहे हैं कि इसे फतेह मुबीन का नाम दे दिया गया है। क्या ये तासुर या ये तर्ज अमल दुरुस्त है, और इसकी रेलेवेंस या इसको अगर रिलेट किया जाए इस तरह?
उसके बाद फिर हमें अपने मुल्क में भी इसका वेलकम करना चाहिए, यानी खुशामदेद कहना चाहिए। यहाँ भी बहुत से गिरोह हैं जो इस्लाम और इस्लामी शरीयत और निफाज शरीयत के नाम पर इसी नुक्ता नजर के कायल हैं, उनके लिए भी फतेह मुबीन की बशारत देनी चाहिए। मेरे नज़दीक जब आप अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, किसी दूसरी जगह के बारे में बात करते हैं, तो आपको इसमें कोई तफरीक नहीं रखनी चाहिए। मैं अगर अपने मुल्क के लिए पसंद करता हूं कि यहाँ लोगों की मर्जी से हुकूमत कायम हो, तो मुझे अफगानिस्तान के बारे में भी यही पसंद करना चाहिए। इससे पहले भी जो हुकूमत बंदूक के जोर पर तालिबान ने कायम की थी इस्लाम और शरीयत की रूह से, वो एक नाजायज इकदाम था, और अब अगर कायम करेंगे तो अब भी एक नाजायज इकदाम होगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह के दीन की पैरवी करते हुए, अल्लाह की शरीयत की पैरवी करते हुए लोगों के सामने ये बात रख दी जाए कि ये तुम्हारा काम है, तुम फैसला करो कि तुम अपना हुक्मरान किसको बनाना चाहते
हो। अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से अभी नहीं कहा गया, लेकिन चले माजी का एक 90 की दहाई में जिस तरह की हुकूमत वहां पर अफगान तालिबान की थी, लेकिन उसको जेहन में रखते हुए वहां रुझान बढ़ रहा है, बुरका खरीदा जा रहा है, ज्यादा तादाद में खरीदी जा रही है, अगर ये हुक्म दिया जाता है अफगान तालिबान की तरफ से, क्योंकि उनका एक अपना माइंडसेट है, वो कहते हैं जी हम अपनी शूरा से मशवरा करते हैं और फिर जो कानून है और शरीयत का नफाज है उसके मुताबिक होगा, अगर वो बार बार ये कहते हैं कि जी हम औरतों को मुकम्मल आज़ादी देंगे जो कि दीन के अंदर है, और अगर वो साथ ये भी कहते हैं कि जी इस्लाम के मुताबिक आपने पर्दा करना है, एक आप काम कर सकते हैं लेकिन जो मुरवजा उसूल हैं दीन के उनके मुताबिक कर सकते हैं, तो फिर तो उन पर एतराज कोई भी अफगानिस्तान में रहने वाली खातून या बाशिंदा नहीं कर सकता। या आप समझते हैं कि नहीं, ये अफगान तालिबान का काम नहीं है कि वो किसी को डायरेक्ट करें कि आपने बुरका पहनना है या आपने अबाया लेना है या आपने पर्दा करना है?
मैंने यही अभी अर्ज किया कि शख्सी मामलात में किसी को भी हक नहीं, ये फैसला करना मेरा काम है एक फर्द की हैसियत से कि मैं दीन को इन शख्सी मामलात में क्या समझता हूं। मेरी राय और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, एक खातून की यहां और हो सकती है, मराकश में और हो सकती है, ये शख्सी मामलात है, यानी मुझे बुर्का पहनना है या नहीं पहनना, मुझे तालीम क्या पानी है, मुझे मौसीकी सुननी है, मुझे तस्वीर कशी करनी है, इसमें अगर दीन का भी कोई हुक्म है तो उसको सिर्फ हम तबलीग और तलकीन के अंदाज में बयान कर सकते हैं। उनके पास जुमे का मेंबर होगा, वो इस उसके ऊपर तलकीन करें, इसको कानून की ताकत से नहीं नाफिज किया जा सकता। आप जानते हैं कि यही तरीका सऊदी अरब में इख्तियार किया गया और बिलाखिर आपको वो सब चीज़ें वापस लेनी पड़ रही हैं। एक तवील अरसे तक खातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती, अकेली बाहर नहीं निकल सकती, ये सब चीज़ें शख्सी मामलात हैं, इनमें तलकीन होती है, इनमें नसीहत होती है, खानदान करता है, आयजा अकरबा करते हैं, हुकूमत भी करना चाहे तो वो भी जुमे के मेंबर पर कर सकती है, लेकिन बंदूक की ताकत से आप इस तरह की चीजें लोगों पर नाफिज करेंगे, आपका ये इकदाम खुद खिलाफ शरीयत। तो इसलिए मैं तो एक लम्हे के लिए भी इसको सही नहीं समझता कि ऐसा किया जाए। हुकूमत को उन चीजों पर अमल करना चाहिए जो शरीयत ने हुकूमत को कही है, वो मैंने आपके सामने रख ली।
अभी आपने कहा जारी बात है, हम तालिबान के कब्जे की बात कर रहे हैं या जिस तरह से वो मुसलत है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान, क्या दुनिया उनको अगर एक्सेप्ट कर लेती है और वो दुनिया को कहते हैं कि हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना दी है और तमाम फैक्शन को साबित कर दिया है, बीच में शामिल कर लिया है इस हुकूमत के अंदर, तो क्या फिर उनकी हुकूमत जायज़ होगी या नहीं? उनको जब तक वो मुकम्मल तौर पर लोगों की राय से नहीं अपनी हुकूमत बनाएंगे तब तक वो जायज़ करार नहीं दी जा सकती।
ये जब हुकूमतें इस तरह बंदूक के या कदीम जमाने में तलवार के जोर पर कायम हो जाती थी तो हमारी फिका में इनको मुतगल्लिब कहते हैं, यानी गलबा कायम हो गया। इस तरह की हुकूमतें आप कानून को समझते हैं डिफेक्टो मानी जाती हैं, ये डिजोरो कभी नहीं मानी जाती, यानी जब तक हुकूमत लोगों की राय की बुनियाद पर कायम नहीं हुई वो नाजायज हुकूमत है, वो 50 साल भी कायम रहेगी तो नाजायज हुकूमत है। ना बादशाहत जायज़ है, ना किसी मजहबी या गैर मजहबी तबके की आमरियत जायज़ है। लोगों की राय की बुनियाद पर कुरान ने जब कहा अमरोहुम शूरा बैनहुम, तो उसने ये नहीं कहा कि अमरोहुम शूरा बैनल उलमा, उसने ये नहीं कहा कि फलां तबके के लोग मशवरा करें, उसने कहा सब मुसलमानों की राय की बुनियाद पर उनका नज़्म कायम होना चाहिए। तो इसलिए जायज़ और नाजायज़ की बहस तो पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगी, अलबत्ता डिफेक्टो मानना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ 3 मरतबा बंदूक ने हुकूमत की तो अमलन मानना पड़ता है, और उसमें आपने देखा कि हमारे सियासी रहनुमा भी फिर रास्ते निकालते हैं कि किसी ना किसी तरीके से निज़ाम चलता रहे। तो उनकी हुकूमत भी अगर कायम हो जाएगी, खाना जंगी खत्म हो जाएगी, तो लोग सुख का सांस लेंगे और ये कहेंगे कि चलिए अमन फराहम हुआ, और दुनिया भी जल्द या बदेर मान लेती है। इस वक्त कितनी जगह है जहां पर फौजी हुकूमतें मानी हुई हैं, जहां पर बादशाहतें मानी हुई हैं, दरा हाले कि असल गुलामी तो इस तरह की हुकूमतों से पैदा होती है, असल गुलामी बाहर से आने से महज नहीं होती। अगर किसी इलाके में कोई तबका लोगों को अपना गुलाम बना के उन पर हुकूमत कर रहा है तो ये भी गुलामी है। तो मेरे नज़दीक तो ये कभी भी जायज़ नहीं होती, जायज़ और नाजायज़ की बहस उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब हुकूमत बंदूक के जोर पर की जाती है, वो फिर डिफेक्टो मानी जाती है, बिलफेल मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है? उसी उसूल पर मानी जाती है कि अमन कायम हो गया है, अब लोगों की जानों को खतरा होगा। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत भी सहाबा ने इसी उसूल पर मानी थी, कोई आदमी उसको जायज हुकूमत नहीं कह सकता।
एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर हम सब, हम कुछ मजीद सवालात हैं मेरे जहन में, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए वो भी आपके सामने रखे जी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है और साथ लिए। जावेद अहमद गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गांधी साहब ये फरमाइएगा सर, अभी ब्रेक से पहले जिक्र हुआ, आपने एक दुरुस्त फरमाया कि जो सऊदी अरब के अंदर हालात थे, अब वहाँ तब्दीली आई है, बहुत सी चीज़ें वापस ली जा रही हैं या उतनी पाबंदी या जिस तरह पहले थी वो नहीं है, और अब खवातीन वहाँ ड्राइविंग भी कर रही हैं, बहुत से मामलात वहाँ उनमें रिलैक्सेशन पैदा की गई है। लेकिन एक बात जिसका हवाला बार बार दिया जाता है वो, क्योंकि यहाँ डिबेट इस हवाले से ही होती है कि जी वो खवातीन के हवाले से है, देखिए जी वहाँ पर खवातीन जो हैं वो हिजाब करती हैं, अबाया पहनती हैं, तो रियासत ने जिस तरह उनको पाबंद किया है वो उसी तरह पाबंद हैं। अगर इसको फिर हवाला डायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर या पूरे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के हवाले से दे दिया जाए तो उसको भी लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई जो रियासत जिस तरह बताएगी लोगों को उस पर अमल करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी के पास इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आपने अबाया पहनना है या नहीं पहनना। अगर रियासत ने आपको बता दिया है तो आपने पहनना है, और हवाला दिया जाता है जाहिर बात फिर सऊदी अरब का।
यानी ये हक किसने दिया है रियासत को? क्या रियासत को कोई मुतलक हुकूक हासिल होते हैं? रियासत इंसानों ने बनाई है, और इसलिए बनाई गई है कि इंसान चूंकि अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको रोकने के लिए एक नज्म कायम किया जाए। रियासत की जुरिस्डिक्शन सिर्फ दो चीजें हैं, कोई पार्लियामेंट भी इससे आगे बढ़ के कोई कानून साजी नहीं कर सकती, किसी हक तलफी को रोकने के लिए, जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती को रोकने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की थी उसमें कभी इन दो हदूद से तजावुज नहीं किया गया, खुलफाए राशिदीन ने कभी इससे तजावुज नहीं किया, कभी खुलफाए राशिदीन की हुकूमत में इस तरह के अहकाम जारी नहीं किए गए। सऊदी अरब की हुकूमत हमारे लिए उसवाए हसना कब से हो गई है, वो खुद एक बादशाहत है। जो लोग तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब वो कायम की जा रही थी तो हिंदुस्तान से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जैसे लोगों ने ये कोशिश की कि वो एक जमहूरी हुकूमत बने, उनसे कुछ वादे वईद भी हुए लेकिन उसके बाद बादशाहत का ऐलान कर दिया गया। तो बादशाहत पर मबनी हुकूमत तो अपनी जात में जायज नहीं है, ये जायज हुकूमतें नहीं है जो आमरियत के तरीके पर या मजहबी इस्तेदाद के तरीके पर या बादशाहों के तरीके पर नज्म चला रही है। जायज हुकूमत वही होती है कि जो लोगों की राय से कायम हो, और किसी हुकूमत का ये हक नहीं है कि वो लोगों के शख्सी मामलात में मुदाखलत करे। लिबास शख्सी मामला है, मेरे परवरदिगार का हुक्म है तो मैं उसके सामने जवाब दे हूँ, औरत हो या मर्द, ये किसी हुकूमत का काम नहीं है कि वो ये तय करे। इसी तरह की बाकी चीजें हैं, हुकूमत का काम ये है, यानी गुनाहों को रोकना हुकूमत का काम नहीं, उसके लिए तबलीग तलकीन नसीहत की जाती है, जुर्म को रोकना हुकूमत का काम है। और जरायम की दो ही किस्में होती हैं, या किसी ने हक तलफ कर दिया होता है या जान माल आबरू के खिलाफ कोई ज्यादती की होती है। तमाम कानून साजी की बुनियाद यही है। मेरे मुल्क की हुकूमत भी अगर इससे हटके कोई कानून बनाएगी तो मैं उस पर तनकीद करूंगा, किसी हुकूमत का हक नहीं, खा वो अमरीका की हुकूमत हो या बरतानिया की हुकूमत हो या पाकिस्तान की या तालिबान की। अब ये बात वाजे होनी चाहिए पढ़े लिखे तबके पर कि शख्सी मामलात में लोगों के अंदर मुदाखलत करके उनको बंदूक के जोर पर अपनी ताबीर दीन को मानने पे मजबूर करना बजाय खुद एक जुर्म है।
अगान साहब, यहाँ बदकिस्मत बात यह है कि मैंने हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी ये बात डिस्कस की, लेकिन ये शायद इतनी डोमिनेट कर जाती है हमारे मुल्क के अंदर, और हमने सारे शायद उसूल या कवानीन या जो सारी डिबेट है उसमें हम जिम्मेदार ख्वातीन को समझते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो पर्दे का ख्याल रखें या वो बड़ा तरीके से ड्रेसअप हों। मैं आपकी तवज्जो दोबारा इस तरफ दिलाना चाहूँगा क्योंकि आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं। आम फहम जबान में किसी भी खातून के लिए, अगर वो किसी भी मुल्क के अंदर है, इस्लाम की रूह से खातून के लिए जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक क्या है? अगर कोई आपको सुन रहा है, जाहिर बात है बहुत सी खवातीन भी सुन रही होंगी, तो उनके जहनों में, क्योंकि यहां पर तो बहुत सी बात आ जाती है कि जी आपने दुपट्टा नहीं लिया तो आपने बेहयाई कर दी, अगर गले में डाल लिया तो ये उससे बड़ी बेहयाई होगी, यदि अगर हिजाब नहीं लिया तो ये तो बहुत गलत कर दिया। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डिबेट्स होती हैं और लेवल किसी को पता नहीं है कि व्हाट इज दी एडिक्वेट लेवल, किस लिहाज से किसने किस तरह ड्रेसअप होना है। जरा इस हवाले से रहनुमा उसूल क्या है इस्लाम के खवातीन के पर्दे के हवाले से?
अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ ये सूरह नूर में खुद बयान कर दिए हैं। अब किसी शख्स को भी उन हदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए, उसमें मर्दों को भी चंद हिदायत दी गई हैं, औरतों को भी। मर्दों से कहा गया है कि जब औरतों से मिलना हो तो वो भी अपनी निगाहों में हया पैदा करें और अपनी निगाहें नीची रखें, औरतों से भी यही बात कही गई है। दूसरी बात, मर्दों और औरतों दोनों से ये कही गई है कि वो महज़्ज़ब शाइस्ता लिबास पहने, ऐसा लिबास जो शर्मगाहों को छुपाने वाला लिबास हो। उसके बारे में आम तौर पर तीनों दर्जात हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, यानी शर्मगाहों और शर्मगाहों से मुत्तसिल अज़ा को ढांपना, उससे आगे के अज़ा को भी ढांपना, कोई बहुत अच्छा लिबास पहन के आपने कोई दुपट्टा भी ले लिया या कोई स्कार्फ भी ले लिया, ये सब तरीके राइज है। इनमें से किसी चीज़ का भी पाबंद नहीं किया अल्लाह के दीन में। इन चीज़ों में बहुत सी बातें अल्लाह ताला बस एक इजमाल के साथ कह देते हैं, और यहाँ भी ये कहा है कि शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई है वो ये है। इसके लिए एक आदमी चंद बुनियादी चीज़ों पर रुक जाता है, या एक औरत रुक जाती है, एक उससे आगे रुक जाता है, फिर मुख्तलिफ मौक़ों के लिबास होते हैं। आप खेल के मौके पर क्या लिबास पहनते हैं, सैर के मौके पर क्या लिबास पहनते हैं, ज़रा अपने मुआशरे में पहलवानों ही का लिबास देख लीजिए। तो इसलिए लिबास के मौके भी होंगे। असल बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई वो ये है कि मर्द भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और महज़ब लिबास पहने, औरतें भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और महज़ब लिबास पहने। औरतों को सिर्फ एक बात जायद कही है, और वो ये कि अगर उन्होंने बनाव संगार किया है, बहुत आराइश की हुई है, तो उसकी नुमाइश न करें। ये अल्लाह ताला के अहकाम है। ये जो हमारे यहाँ पर्दे का तसव्वुर है या बुरके पहनने का तसव्वुर है, ये कुरान के लिए हदीस के लिए बिल्कुल अजनबी है। मैं इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं कर चुका हूँ, अगर कोई शख्स सुनना चाहे तो उसको सुन ले। इसके मुकाबिल में जो दलाइल पेश किए जाते हैं उनमें से एक एक चीज पर मैंने तबसरा कर लिया।
आंसर ये फरमाइएगा, यहाँ उस पर बड़ी लेदे हुई, फिर वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर वजाहत देनी पड़ी कि मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन एक उससे जो जनरल तासुर लिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बहुत कदावर शख्सियत है, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी उनके सपोर्टर्स हैं, फैन फॉलोइंग भी है, हर जगह मौजूद है। उन्होंने एक जगह कहा कि जो अगर कोई खातून अगर कुछ ड्रेसअप इस तरह हो जाती है तो वो जारी बात है लोगों की या मर्दों की जहनों के ऊपर असर है, और अगर किसी घुटे माहौल में लोग हैं तो जारी बात है वो उससे ज़्यादा उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह होंगे या वो ज़्यादा इस तरफ रागिब हो जाएंगे। ये ज़रा फरमाइएगा इस हवाले से कोई भी जस्टिफिकेशन कि खातून किस तरह से ड्रेस्ड है, और क्या वो अगर बहुत ही चलें बहुत ही अजीब तरह से भी ड्रेस्ड अप है तो कोई जस्टिफिकेशन किसी मर्द के पास है? क्योंकि यकीन मानिए जब ये अभी ये मीनार पाकिस्तान का वाकया हुआ तो बहुत से लोगों ने वहां जाकर वीडियोस बनाई, और लोगों के जहनों में ये तासुर अब मौजूद है कि देखिए जी खातून ये कर रही थी तो फिर जो लोग हैं लड़के हैं जी वो खराब होते हैं और वो इस तरफ रागिब हो जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं।
नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं इसी जुर्म के लिए, कभी इस तरह के उजर नहीं पेश करने चाहिए। मैंने तो आपसे अभी अर्ज किया था कि कोई मर्द या औरत बराना होकर भी बाहर निकल आता है तो क्या उसके खिलाफ जुर्म का इर्तकाब किया जाएगा? ये किसी को हक नहीं है। ये जो चीजें हैं कि औरतों का लिबास महज़ब हो, मर्दों का लिबास महज़ब हो, नौजवानों का लिबास महज़ब हो, वो अपने दीन की हिदायत भी सामने रखें, अपनी तहजीब को भी देखें, ये तो आम हालात में हमें बताना चाहिए। ये तालीम के जरिए से बताएं, ये जुमे के मेम्बरों पर बताएं, ये घरों में तालीम दें, ये तालीम का मौजू है। इसकी बुनियाद पर आप सोसाइटी में लोगों को ये हक देंगे कि ओबाश आए और वो लोगों पर इस तरह हमलावर हो जाए? किसी जुर्म के लिए इस तरह का इस्तदलाल न करना चाहिए, वो वजीर आज़म करे या कोई आम आदमी करे, ये उसका मौका नहीं होता। इस तरह के मौकों के ऊपर सिर्फ निगाह जुर्म पर होनी चाहिए और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये तो लोगों को लाइसेंस देना है कि वो अपने तौर पर तय करें कि अच्छा फलां खातून के सर पर दुपट्टा नहीं था या उसने ठीक तरह से नहीं लिया था, इस वजह से मुझे हक हासिल हो गया है कि मैं आगे बढ़कर जो जी चाहे कर दूं। ये खुद मुजरिमाना ज़हनियत है, इसका कोई जवाब नहीं है। लिबास के बारे में इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह के दीन में बाद हिदायत दी गई है, वो बहुत वाज़े हिदायत है, उससे तहजीब और शाइस्तगी नशोनुमा पाती है, वो बड़ी उम्दा हिदायत है, लेकिन वो नहीं है कि जो लोग अपने जहन में सोचे हुए।
बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अहमद गामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे।